ओम शांति। पहले तो मुझे ये संकल्प आ रहा है कि इस बार के तीनों ही टॉपिक योग से ही संबंधित हैं। मुझे याद आ रही थी जब ये भविष्य की नशे की बात हुई तो दादी जान की सुनाती थी, आप लोगों ने शायद ही सुना हो, हमने बाबा की ये बातें बहुत सुनी हैं। दीदी मनमोहिनी सुनाती थी जो 3 साल बाबा के साथ रही साकार में, लास्ट में वैसे दिल्ली में रहती थी, तो कहा बाबा अपनी गद्दी पर बच्चे की तरह चलते रहते थे, कभी कभी कोई नहीं होता था वहां, जैसे बच्चा चलता ना 4 पैरों पर, 2 आगे 2 पीछे, हाथ आगे और 2 पैर पीछे। और दीदी अचानक बाबा के कमरे में गई, बाबा ये क्या? तो बाबा उसको देखकर मुस्कुराते थे और बोलते थे, बच्ची बाबा को नशा चढ़ा हुआ है कि मैं ये बूढ़ा शरीर छोड़कर जाकर मिचनू कृष्ण बनूंगा। मिचनू सिंधी में कहते हैं बच्चे को। तो बाबा का बिल्कुल स्वरूप वही हो जाता था, एक्सप्रेशन सारे बच्चे जैसे चेहरे पर, बूढ़ा नहीं बच्चा हो गया है। कई बार दीदी मनमोहिनी ने बाबा को इस रूप में देखा, वो सुनाया करती थी। दादी जान की सुनाया कि जो अब हिस्ट्री हॉल है, दादी यो के कमरे उसके पीछे थे 2 बने हुए, अब तो और भी बन गए हैं। तो वो अपने कमरे में जा रही थी दिन के 3 बजे, तो तब कोई नहीं होता ना, सब सोए रहते हैं, बाबा अकेले उस हाल में डांस कर रहे हैं। कल्पना करो, विजन बनाओ, बाबा डांस कर रहे हैं, दादी गुजर रही है, बाबा ने सोचा कोई नहीं है ना, यहाँ सब सोए हुए हैं, इन्होंने देख लिया और इनसे रहा नहीं गया, खड़ी होके देखने लगी। डांस ऐसी चीज है ना, सब देखने लगते हैं। बाबा का भी ध्यान भंग हुआ और देखा, अच्छा जनक आओ बच्ची आओ, बाबा आप डांस कर रहे थे। हाँ बच्ची, बाबा को नशा चढ़ा हुआ था, मैं क्या बनने जा रहा हूँ, विश्व महाराजन नारायण। तो ये बहुत सुंदर हमारे योग की एक विधि है कि जब हमें भविष्य का नशा बहुत बहुत सुंदर हो जाता, बिल्कुल हम उसमें आ जाएं, मेरा कल ये है, तो वो संस्कार वर्तमान बन जाते हैं, भविष्य वर्तमान बन जाता है। इसलिए हमारी साधनाओं में बहुत सुंदर साधना है 5 स्वरूपों का अभ्यास। सबको ध्यान देना है, 3 टॉपिक, गॉडली सस्टेनेंस, ईश्वरीय पालना, स्वराज्य अधिकार और भविष्य का सारा, 3 योग के सब्जेक्ट हैं। जैसे जैसे हमारा योग बढ़ता है, हमारी स्मृतियां क्लियर होती जाती हैं। सबको ये ज्ञात रहे कि हमने जो चक्र लगाया है 5000 साल का, उसका सारा पाठ जैसे आत्मा में भर गया है ना, बजाया है तो भर गया है, अब फिर से सब जैसे डिलीट हो जाएगा, डिलीट इन द सेंस कि वो सब लोप होके नए सिरे से प्रारंभ होगा। तो वो सारा पार्ट बहुत अटेंशन से सुनेंगे मैं जो कह रहा हूं आपको, हमारे इस ब्रेन में भी अंकित है। सतयुग त्रेता, हमारी उसकी संपूर्ण प्योरिटी, सारे गुण, जो कुछ हमारे पास था, जो हमारी फीलिंग्स थी, जैसी हमारी बुद्धि थी, जैसे हमारे विचार थे, जो हमारे गुणों का लेवल था वहां, वो सब हमारे वर्तमान ब्रेन में भी प्रिंट है। तो हमारे इसी ब्रेन में अनंत ज्ञान, 4 युगों में जो ज्ञान हमने लिया हो, कोई किताब पढ़ी हो, कुछ देखकर कुछ सीखा हो, ज्ञान के कई माध्यम है ना, सुनकर भी ज्ञान होता है, देखकर, सुनकर भी, स्पर्श से भी, पढ़कर भी, सुनकर, जो भी ज्ञान हमने लिया हो, वो सब हमारे वर्तमान ब्रेन में भी प्रिंट है। हर बार हमारा ब्रेन जला दिया जाता है देह के साथ, लेकिन सूक्ष्म शरीर में वो सब कायम रहता है। और नया शरीर जब बनता है तो नए ब्रेन में वो पुनः प्रिंट होता है। इसलिए नई रिसर्च के लिए, नए अनुभवों के लिए ये आवश्यक है कि हम अपने संपूर्ण विवेक को जागृत करें। बिल्कुल सूक्ष्म बात हो गई। संपूर्ण विवेक, चारों युगों का विवेक, त्रिकालदर्शी जिसे बाबा कहते हैं, उस सब को हम जागृत करें। और उसका तरीका है, व्यर्थ के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं, जैसे वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं। मन बना दें आप, मेंटली अपने को प्रिपेयर कर दें, व्यर्थ मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। जैसे फिजिक्स का स्टूडेंट हिस्ट्री की क्लास में जाकर नहीं बैठेगा, पक्का कर दे ये मेरा सब्जेक्ट नहीं, सो नो इंटरेस्ट। इसकी बहुत आवश्यकता है। जितना हमारी बुद्धि रिफाइन होगी उतनी डिवाइन होगी, और जो जन्म जन्म का हमारी बुद्धि में भरा हुआ है वो इमर्ज होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, वो काम करने लगेगा। तो मैं आपको एक बहुत सुंदर बात कहना चाहता हूँ, स्वराज अधिकारी की है, आपको बताई गई या नहीं मुझे पता नहीं। हम मन बुद्धि के मालिक हैं। इस फीलिंग को सभी को बढ़ाना है, हे मेरे मन मैं तुम्हारा मालिक हूँ, याद दिलाओ मन को और अपने को। हे मेरी बुद्धि मैं तुम्हारी मालिक हूँ, तुम दोनों को मेरा आदेश मानना ही है। बहुत सुंदर अनुभव होंगे। हमारे अंदर मालिकपन बढ़ता जाएगा और मन बुद्धि के अंदर हमारे आदेश को, हमारे कमांड्स को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। सब करके देखेंगे इसको, इसको अनुभव से ही जाना जा सकेगा। आप अपने मन को रोज कहने लगो, दो बार ही अभ्यास करके स्वराज अधिकारी का, हे मेरे मन शांत, बहुत भटक लिए, बी स्टेबल, अब इधर ही हो जाओ, कहीं नहीं भागना है। हे मेरी बुद्धि अब डिवाइन हो जाओ। सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान को धारण करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ भरा है, सब श्रेष्ठ चीजों को इमर्ज करो, नेगेटिविटी को बाहर फेंक दो, क्लीन हो जाओ। ये काम करें आप रोज और देखें इसका परिणाम। जो कईयों ने प्रश्न पूछा है कि हम 8 घंटा योग कैसे करें, उसकी ये तैयारी है। क्लीन करें अपने को, क्योंकि ये मन का भटकना ही है जो किसी को योगी नहीं बनने देता। परमात्म पालना के अनुभव, बिना अनुभव, बिना योग के अनुभवों के, बिना योग की प्रैक्टिस के किसी को परमात्म पालना फील नहीं होगी। हम देख रहे हैं इस बार बाबा को, उसका प्यार का संपूर्ण स्वरूप देख रहे हैं ना। बाबा हमें बहुत प्यार दे रहा है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। बाबा के प्यार को, प्यार तो वो सदा ही देता है, प्यार का सागर है, तो प्यार तो देना उसकी नेचुरल नेचर है। परंतु ऐसा लगता है, देखो मेरी फीलिंग, कि बाबा ने शायद सोच लिया हो, हम ये सोच रहे हैं कि बाबा ने शायद सोच लिया हो, ज्ञान तो इन्हें 76 इयर्स तक बहुत दे दिया, ऐसा ही कहें कि संपूर्ण दे दिया, अब इन्हें प्यार की पालना दे दूं, क्योंकि फाइनल चेंज प्यार में आना इजी होता है। देखा इस बार आपने बाबा को, उनकी दिल ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। देखा था, मुझे तो लगता था शायद बाबा आज कुछ बोलेगा ही नहीं, और वही वही बात बाबा ने दोहराई, ज्यादा तो कुछ कहा ही नहीं, मंजीत और प्यार ही प्यार। तो ऐसा लगता है कि बाबा द्वापर और कलयुग की भक्ति की भी स्थापना शुरू कर दी है। जब हम सबके सब कॉन्शियस माइंड में उसका प्यार इतना बढ़ जाएगा अब कि द्वापर से जाके हम उसके प्यार को याद किया करेंगे, उसे मिलने की चाह हो जाएगी, उसके दर्शनों की अभिलाषा हो जाएगी। तो ये प्यार वो दे रहा है, लेकिन ये हमारे लिए पालना है उसकी, ये वही अनुभव करेंगे जो अपने को प्यार से भरपूर करेंगे। इसमें आत्माओं के लिए भी प्यार, उसके यज्ञ के लिए भी प्यार, उसके कार्य के लिए भी प्यार, उसकी मुरली से भी प्यार, ये सब प्यार फाइनल पहुंचता है बाबा को, ये उसके प्यार का प्रतिरूप है। इससे हमारी बहुत पालना होगी। सभी अपने अपने प्रोजेक्ट में हो सके तो रोज कुछ ना कुछ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमने एक चार्ट बनाया, भाई साहब आपको बताएंगे, उसमें स्वयं से बातें करने की कुछ बातें थी। योग की वृद्धि के लिए हर पुरुषार्थी को स्वयं से बातें करने की कला आनी ही चाहिए। तीन हमने उसमें लिखी, उदाहरण के लिए तीन फेजिज, जैसे एक एक में चार चार पांच पांच लाइन, ऐसे ही सभी रोज या वीकली, तीन दिन में एक बार, तीन चार लाइन स्वयं से बात करने की लिखा करेंगे, स्वयं क्रिएट करेंगे। हमारे पास जो क्रिएटिव एनर्जी है, इसको यूज करने से हमारा योग बहुत बढ़ जाता है। एक बात ये ध्यान देंगे, तीनों ही जो सब्जेक्ट लिए हैं, तीनों की ही सफलता के लिए सुंदर विचार क्रिएट करना, क्योंकि मन की टेंडेंसी, मन की नेचर सभी जान ले, मन में जितने सुंदर विचार होते हैं मन उतना ही साइलेंट हो जाता है। मन की भूख है, मन का भोजन है सुंदर विचार, ये भोजन मिलते ही मन तृप्त होकर शांत हो जाता है, और ये क्रिएटिव एनर्जी हमारे पास है, हम इसको यूज करेंगे। और इसके लिए वही आवश्यकता है कि मन में व्यर्थ संकल्प न हो। अगर व्यर्थ संकल्प हैं, तो ये पॉजिटिव संकल्पों को क्रिएट करने की मन की शक्ति खत्म हो गई, यूज हो गई। इस पर बहुत ध्यान देना है। योग बढ़ाना, पहले इसके लिए स्वयं में दृढ़ इच्छा हो। सभी कह सकते हैं हमारे पास इच्छा होती है, इच्छा होती है, दृढ़ इच्छा हो। ऑन एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए, मुझे आज योग का चार्ट इतना करना ही है। मैंने जब अपना योग का चार्ट बढ़ाना प्रारंभ किया, वो दिन थे 69 के अप्रैल के दिन, बस आ गए हैं 44 इयर्स बैक। पहले दिन का मेरा अनुभव यही था, बाबा की मदद मिली बहुत, उसकी दृष्टि मिल गई थी मुझे। एक दिन पहले म्यूजियम की ओपनिंग करने अव्यक्त बाबा आए थे, ऊपर जो म्यूजियम है वहाँ कुछ ऐसी घटना हुई कि हमें आगे बुला लिया गया और हमें दृष्टि मिली, और बाबा ने ये कहा प्रतिज्ञा करके पुरुषार्थ करो। ये पहली बात थी जो मेरे अंदर चली गई, जो कि डायरेक्ट मैं ही था बाबा के सामने बिल्कुल, और जैसे मुझे कह रहे थे। वो चार थे हम, जगदीश भाई भी थे, उन्होंने मुझे सबसे आगे किया। तो मैंने पहले ही दिन, अगले ही दिन प्रतिज्ञा की, आज मुझे रात को अपना योग का चार्ट इतने घंटे करना है, और अगर नहीं हुआ तो रात को जाकर करूंगा, भोजन छोड़कर करूंगा। हो गया, बिफोर टाइम वो पूरा हो गया। ऐसी दृढ़ता की आवश्यकता। मैं आज भी याद करता हूं उन दिनों को, आज भी मैं वो काम नहीं कर सकता जो तब किया था मैंने, क्योंकि तब छोटी आयु थी, बॉडी में भी एनर्जी थी, दूसरा रूप था सब। अगले दिन उससे मैंने एक घंटा बढ़ाकर प्रतिज्ञा की, आज रात तक इतना कर लेना है 10 बजे तक, उतना ही हो गया। तीसरे दिन एक घंटा और बढ़ा के किया और आप हैरान होंगे, फिर मैं कुछ दिन तक आधा आधा घंटा बढ़ाया और योग इतना सुंदर हो गया, वो मेरी कल्पनाओं से भी बाहर की बात थी। दृढ़ता, मुझे करना है, उसके लिए हमें त्याग की भी जरूरत होती है, अपने से मेहनत भी, और बातों से आंखें बंद कान बंद इसकी भी जरूरत होती है। चार्ट लिखना परम आवश्यक है। मैं 2 चार्ट लिखा करता था, एक जैसा भाई साहब आपको सुनाएंगे, मैं बड़े बड़े चार्ट बना लेता था अपने, और दूसरा चार्ट केवल योग का, हर घंटे कितना योग हुआ। ये जरूरी है योग का चार्ट बढ़ाने के लिए। आप 6 मास अगर एक बार मेहनत कर लें तो जीवन भर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये मेहनत दृढ़ता पूर्वक जमकर करनी पड़ेगी। इसमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसमें बोरियत हो सकती है, बहुत लोगों को होता है 3 दिन पुरुषार्थ अच्छा हुआ, 4थे दिन आपे ही डाउन, 7 दिन बहुत अच्छा हुआ, 8वें दिन आपे ही डाउन। एक टीचर बहन मेरे पास आई, वंडरफुल अनुभव था 2 बहनों का, कहा जिस दिन गुरुवार आता है सवेरे से मेरा योग ही नहीं लगता, बाकी दिन बहुत अच्छा लगता है। दूसरी की समस्या थी, मेरे को रोज होता है 4 बजे योग नहीं लगता, 5 बजे ही लगता है। मैंने उसे सारा पूछा, डिटेल मेरे पास ही आई, कहा मैं 2 बजे भी उठी, मैं 3 बजे भी उठी कि मेरा योग लगे, लेकिन लगता ही नहीं, और 5 बजे बुद्धि जुड़ी। ये कुछ इफेक्ट्स हैं, ब्रेन के भी इफेक्ट्स हैं, समय का भी इफेक्ट होता है, बहुत सारे इफेक्ट मनुष्य के ऊपर काम करते हैं, इनमें भी हमें मैनेज करना होता है। बहुत लोग यही फेल होते हैं कि बहुत अच्छा पुरुषार्थ चलते चलते मन नीरसता फील करता है, पुरुषार्थ की गति टूट जाती है। योग अगर 5 घंटे हो रहा था तो 1 घंटे पर आ जाता है और फ्रस्ट्रेशन होता है, निराशा आती है जीवन में, क्या करें। इसमें ही मनुष्य को जरूरत होती है दृढ़ता की, कि वो पुनः पुनः दृढ़ता पूर्वक पुरुषार्थ करे। ध्यान देंगे, सब ब्राह्मणों को अच्छी तरह जानना चाहिए, आज का वरदान आपको ख्याल होगा, प्योरिटी के बिना योग में सफलता नहीं होती है। अब प्योरिटी का हमारा एक विस्तृत स्वरूप है, चित्त को निर्मल नहीं किया, सबके लिए भावनाओं को श्रेष्ठ नहीं बनाया, चित्त को शांत नहीं किया, दूसरों को देखने की आदत बनी रही, बहुत क्वेश्चंस मन में उठाने की आदत बनी रही, ये क्यों ये क्यों ये क्यों, तो योग का चार्ट डिस्टर्ब होता ही रहेगा। तो जिसने अपने चित्त को बिल्कुल श्रेष्ठ भावनाओं से भर लिया हो, मन को निर्मल किया हो, ये ज्ञान के द्वारा किया जाएगा। कोई ये भी कह सकता है ये सब योग से ही तो होगा, योग से होने के साथ बात तो बाद की है, पहले हमें ज्ञान बल से इन स्थितियों को बनाना पड़ता है। इसलिए योगी बनने के लिए ज्ञान का बल परम आवश्यक है। बहुत लोग शिकायत ही करते रहते हैं, ये मुझे कुछ नहीं करने देते, लेकिन ये शिकायत गलत है। मनुष्य कुछ करने नहीं देता, लेकिन भगवान करने दे रहा है, कौन पावरफुल है, करना पड़ेगा हमें। जिसको योगी बनना है उसको योगी बनने से कोई रोकने में समर्थ नहीं है। आज की मुरली की एक बात याद रख लें आप, मैं राज ऋषि हूं। अगर तुम ये याद करोगे बार बार तो तुम्हें अति गहरा सुख प्राप्त होगा। अनुभव करके देखना चाहिए उसी दिन कि इसको बार बार स्मृति में लाने में, मैं राज ऋषि, उठते ही याद करें, मैं राज ऋषि हूं, मैं श्रेष्ठ योगी हूं, तो बहुत सुंदर स्थिति हो जाएगी। सभी ध्यान देंगे, जिन धारणाओं को हम लेंगे, हालांकि न केवल वो स्वर्ग की व्यवस्था के लिए है, बल्कि संपूर्ण जो हमारा योग का पुरुषार्थ है, जो तीनों हमारे सब्जेक्ट हैं इस बार, तीनों में ही वो संपूर्ण लाभदायक है। जैसे एक गुण लिया है संतुष्टता, बहुत बड़ी चीज है संतुष्टता। केवल ये इच्छाओं से, स्थूल वस्तुओं से संबंधित नहीं है। हमें कोई पूछे नहीं, हमें कोई अवसर न दे, हम बहुत योग्य होते भी अवसर न दें, अयोग्य व्यक्ति को अवसर दिया जाए, और बहुत सारी चीजें जीवन में हैं, सबके सामने अलग अलग हैं, उन सब में संतुष्ट रहना कहने से नहीं होगा। ज्ञान की डेप्थ की जरूरत है, कुछ विशाल चीजों की जरूरत है जानने की, अपने को संतुष्ट करने के लिए, नहीं तो छोटी बात आत्मा को असंतुष्ट करेगी। जिस राजनीति में है कि भाई अयोग्य लोग ऊपर और योग्य लोग नीचे, सब जगह दिखाई देता है, जिनका चिंतन ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं कि देश का कल्याण कैसे करना है, वो ऊपर, और जो चिंतनशील हैं वो कहीं भी नहीं। ये तो कलयुग का इफेक्ट है। लेकिन हमारे यहां भी कभी ऐसा हो जाए कि बिना पढ़ा लिखा इंचार्ज, मैं हंसी की बात कह रहा हूं, और पढ़ा लिखा झाड़ू लगाने वाला। मैं अपने यहां जब ज्ञान सरोवर में शुरू हुआ तो लोगों को ये ट्रेनिंग देता था कि तुम्हारा इंचार्ज अगर बिना पढ़ा लिखा बन जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हमारे पास आए, डबल एम में थे, इंजीनियरिंग किया हुआ था, बीए तो बहुत सारे थे, तो मैं उन्हें सिखाता था कि अगर बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति तुम्हारा इंचार्ज हो तो तुम उससे कैसे मैनेज करोगे, उसमें आत्मसंतोष भी रखना पड़ेगा, मैनेज भी करना पड़ेगा, और अपना विकास भी करना पड़ेगा, और अगर तुम अपना विकास ऐसा कर लो तो तुम उनसे आगे निकल सकते हो। बहुत सारी चीजों की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी हमारे पास होनी चाहिए, इसका सभी ध्यान देंगे। मैंने एक बहुत अच्छी बात लिखी, इनको लिखाई है, वो आपको सुनाएंगे। ये बात वो है जिसको मैं सालों साल रोज याद करके योग को एंजॉय किया है, वो मैं क्लासेज में सुनाता हूँ। ये मैं इसलिए लिखाई है कि इस तरह सुंदर विचार मन में क्रिएट करेंगे तो योगी बनना सहज हो जाएगा। वो बात जो एक मैंने लिखाई वो ये है, बाबा की बात है, साकार मुरलियों की थी, तभी मैं सुनता था, साकार में ही सुनी थी। बच्चे तुम दो युग तक देवताओं के साथ रहे, दो युग तुमने मनुष्यों के साथ रहकर भी देख लिया, अब थोड़ा सा समय भगवान के साथ रहकर देखो। मैं बार बार याद करता, दिन में कई बार याद करता था, और बस ऊपर ही रहना है, इसकी मुझे लिफ्ट मिलती थी। ऐसी सुंदर बातें, तो मैं अपनी डायरियों में ऐसी सुंदर बातें बहुत लिख के रखता हूँ, जिनको याद करने से चित्त शांत रहे, जिनको याद रखने से हम बेफिक्र बादशाह रहें, बोझ मुक्त रहें, डबल लाइट रहें। एक बहुत गहरी बात जो मैं कई साल तक अपनी डायरी के पहले पेज पर लिखता रहा, नई डायरी बनाई तो पहले पेज पर उसको लिख लेता था। तुम तो केवल मेरी याद में मगन रहो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। पसंद आई? लेकिन बहुत गहरा विश्वास चाहिए इसमें, बहुत गहरा विश्वास, कि जिनको भगवान साथ दे रहा है उनको चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो केवल वो करते चलें जो वो कह रहा है। देखो, जानकी दादी सुनाया करती है कि एक दिन बाबा से उनकी कुछ ऐसी बात हो रही थी, बाबा ने उन्हें कहा, बच्ची तुम अपने भाग्य की चिंता न करो, तुम्हारा भाग्य तो मेरे हाथ में है। तब से वेरी गुड फीलिंग में दादी आ गई। जिसका भाग्य भगवान बना रहा हो, उसे अपने भाग्य बनाने की चिंता क्यों? पुरुषार्थ जरूरी है पर चिंता क्यों? तो बाबा की ऐसी बहुत सुंदर बातें हैं जिन्हें सोचने से हम निश्चिंत होते हैं, जिसकी बहुत जरूरत है आजकल, बहुत जरूरत है। मुझे कोई एक कहानी सुना रहे थे, मुझे बहुत प्रिय लगी, महादेव की कहानी, कोई सीरियल चल रहा होगा उसमें से मुझे सुनाई कि शनि आ रहा था, शनि पार्वती ने कहा था एक सुंदर महल बना दो कैलाश पे, शनि आ रहा था। नारद जी ये काम खूब करते थे, नारद जी ने पार्वती को मैसेज दे दिया शनि आ रहा है, सब कुछ बिगड़ जाएगा। पार्वती ने महादेव को कहा कि उसे रोको, महादेव जी आगे चले गए उसे रोकने के लिए। शनि रुक गया, कहा अच्छा आपने मुझे रोक तो लिया ही, कम से कम डमरू तो बजा के दिखा दो अपना। शनि भी होशियार था, महादेव जी ने डमरू बजाया। डमरू बजाने से पार्वती ने जब डमरू की आवाज सुनी तो उसने सोचा शायद शनि रुका नहीं है, इसलिए महादेव जी ने डमरू बजा दिया मुझे सावधान करने के लिए। तो पार्वती ने जो कुछ बनाया था ना उसको नष्ट कर दिया। महादेव जी आ गए, देखिए कितनी सुंदर बात है आगे की। पार्वती को देखा कि तुमने सब नष्ट कर दिया, कि हाँ मैंने तो आपने डमरू बजाया, मैं सोचा कि मुझे चेतावनी दे रहे हैं कि शनि आ रहा है। कहा तुमने यही तो गलती कर दी, तुम्हें मेरी शक्तियों पर विश्वास ही नहीं था कि तुमने मुझे कह दिया है, काम दे दिया है शनि को रोक देना, तो तुमने क्यों मान लिया कि मेरे से शनि रुका नहीं है? तो यही तो शनि का इफेक्ट हो गया कि तुमने आप ही खत्म कर लिया। मुझे बात बहुत अच्छी लगी, जो काम हमने बाबा को कह दिया, समझ गए ना, हमें विश्वास हो जाए वो तो बना हुआ है मदद करने के लिए, उससे बड़ी शक्ति तो कोई है ही नहीं, वो कर देगा। हमें धीरज भी रखना है, उसमें विश्वास भी रखना है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें योगी बनाने में बहुत बड़ा काम करेंगी, इसलिए सुंदर संकल्प अपने पास रख लें। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव लोगों के मेरे पास आते हैं, नाराजगी के भी आते हैं। किससे नाराज? बाबा से नाराज। बाबा के बच्चों को बाबा से नाराज होने का अधिकार भी है, मैं खुश भी होता हूं उनकी बात देखकर। एक भाई और एक बहन आए मेरे पास पिछले ग्रुप में, उन पर कोई बहुत बुरा इफेक्ट था तांत्रिक। भाई बहुत स्ट्रांग था, रियली मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, बहुत स्ट्रांग, वो सब कुछ फेस करता आ रहा था, पर उसे बाबा पर बहुत गुस्सा था, बाबा मदद क्यों नहीं करता? तुम भी कहते हो जब बाबा को बुलाओगे आ जाएगा, मैं तो रोज बुलाता हूँ आता ही नहीं। बहुत गुस्सा वो कर रहा, निराशा आ रही उसके जीवन में, सच्ची बात है ये, मैं तो थोड़ा बता रहा हूँ, वो तो एकदम गर्म हो गया। क्या बाबा, मैंने 12 साल लगा दिए बाबा की सेवाओं में, तन मन धन सब लगा दिया है, उसके अलावा मैं किसी की ओर नहीं देखा, बाबा आता ही नहीं मेरे बुलावे पर। मैंने उसे बताया, उसने ही बता दिया था कि इन्हीं तांत्रिकों ने मेरे एक साथी को मार के नष्ट करा दिया है। मैंने कहा बाबा तुम्हारे बुलावे पर आता है, इसलिए तो तुम जिंदे हो। हमारे विश्वास की परीक्षा अवश्य होती है। सभी ऐसी सुंदर बातें अपने अनुभवों से सीखते हुए, सीखना होगा अनुभवों से, ज्ञान सब कुछ नहीं सिखा सकता, सीखते हुए अपने विश्वास को बहुत बढ़ाएं और योग के चार्ट को दिनों दिन बढ़ाने का लक्ष्य रखें। जब मैं अपने योग के चार्ट को बढ़ाता था, मेरे साथी बहुत होते थे सदा ही, बाबा ने मुझे कह दिया था दूसरों को भी अपने जैसा बनाओ तब बाबा योगी कहेंगे, एक दिन मुझे ऐसे कहा बाबा ने। तो मैं जो अपने साथी बनाता था, मैं उन्हें कहता था रोज 1 मिनट योग का चार्ट बढ़ाना, तो 2 मास में 1 घंटा बढ़ जाएगा ना, इस तरह कितना हो जाएगा। कई लोग सफल हुए। आप सब भी ऐसा एक प्लान बना लें, जिसको श्रेष्ठ योगी बनना है तो हर वीक अपना चार्ट 15 मिनट बढ़ा देना, 1 घंटे से शुरू करो मिनिमम, 1 हफ्ते में वो 1.25 घंटे हो जाना चाहिए। उसकी प्लानिंग आवश्यक है, बिना प्लानिंग के कोई लक्ष्य पर पहुंचता नहीं, चाहे लौकिक काम हो कोई भी हो, उसकी जितनी सुंदर प्लानिंग जिसके पास है, और एक एक्शन प्लान जिसे हम कहते हैं, एक प्लानिंग कागज पे लिख दी, एक फिर उसे करने लगे हम, उसके करने के मार्ग में कुछ बाधाएं आ रही हैं, उनको हमें दूर करना भी आना चाहिए। तो ये संपूर्ण सत्य है कि जो योगी बनना चाहे वो अवश्य बनेंगे, और योग ही इस जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। मैं आज की वरदान की बात सुना रहा था आपको, प्योरिटी की, बहुत बड़ी चीज है ये हमारी प्योरिटी। ऐसा हम समझ लें, एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा रात को जब चमकता है तो संसार को अपनी ओर आकर्षित करता है ना, हमारी संपूर्ण प्योरिटी संसार को अपनी ओर आकर्षित करेगी, देवकुल की आत्माओं को खींच खींच कर ले आएगी बाबा के पास। इसलिए उस पर हमें बहुत ध्यान देना, जो उसका एक विस्तृत स्वरूप है उसको आप लिखेंगे अपने पास, परमात्म पालना में भी जो पहला टॉपिक है, और स्वराज अधिकारी में भी, और सतयुग की व्यवस्था तो संपूर्ण प्योरिटी पर बेस्ड है। तीनों में हम प्योरिटी के 10 पॉइंट लिखेंगे, निगेटिव जो इम्प्योरिटी के हैं, दूसरे के लिए घृणा भाव, दूसरे के लिए शत्रु भाव, दूसरे के लिए अशुभ भावनाएं, दूसरे के लिए बदले की भावना, ये भावनाएं हैं हमारी, ऐसी 10 बातें आप लिखें। देह का आकर्षण, बोल में विकृति, क्रोध, अहंकार। मैं आज सोच रहा था किसी को देखकर, किचन में कोई देखने आ गया, किचन बहुत सुंदर बना है, वो चीजें ऐसी जो आपने भी नहीं देखी होंगी, मैंने भी आज पहली बार देखी, मुझे ले गए, देखो ये भी बना हुआ है। तो मैं सोच रहा था, कुछ बातें हो रही थी कि यज्ञ में सबसे बड़ा विघ्न अहंकार का है, ये इम्प्योरिटी है। कोई कितना भी अच्छा ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, किसी ने जीवन में कह दिया हो मुझे हाथ भी नहीं लगाना, न लगाया हो किसी ने, लेकिन अहंकार हो तो उसकी प्योरिटी का बल 0 पर रहता है, उसकी पवित्रता कोई काम की नहीं होती, वो भगवान को प्रिय भी नहीं होती। ऐसी 10 बातें प्योरिटी इम्प्योरिटी से संबंधित लिख ले, और उन 10 बातों को हटाएं, बिल्कुल चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाए, और फाइनल स्थिति ये हो जाए, कोई कुछ भी कह दे, कोई भी बात हो जाए, हमें जरा भी आवेश न आए, हमारी भावनाओं में कोई चेंज न आए, कोई हमें अपना शत्रु दिखाई न दे, ऐसी प्योरिटी, इससे बाबा की बहुत सेवा होगी, ईश्वरीय पालना का गहरा अनुभव होता रहेगा, स्वराज अधिकारी भी हम बन जाएंगे, और सतयुगी राज भी हमारी आंखों के सामने आने लगेगा। तो हमें 5 स्वरूपों का अभ्यास बहुत पढ़ाना है, आप चाहे 15 दिन के लिए एक्सपेरिमेंटल तौर पर करके देख लें, 5 बार सवेरे, 5 बार सोने से पहले 5 स्वरूपों के अभ्यास करें, ज्यादा समय नहीं, 10-10 मिनट लगाएं, और देखें इससे मन कितना आनंदित होता, आनंद, और मन आनंदित होकर शांत हो जाता है, और जितना जितना भविष्य का स्वरूप हम रोज इमर्ज करेंगे, उसके बारे में नई नई फीलिंग्स, नए नए विजन, नए नए स्वरूप हमें दिखाई देंगे, और ये बहुत अच्छी बात होगी। ओम शांति।